एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
निगाहों में बसा है, मेरे गीतों में सजा है। निगाहों में बसा है, मेरे गीतों में सजा है। वो यीशु हमारा जो सबका प्यारा, वो यीशु हमारा जो सबका प्यारा। निगाहों में बसा है, मेरे गीतों में सजा है। निगाहों में बसा है, मेरे गीतों में सजा है। वो यीशु हमारा जो सबका, यीशु हमारा जो सबका प्यारा। लेकर जन्म इस माटी पर, किया मर इस धरती को, देकर गवाही उन वचनों पर, तूने संवारा इस जीवन को। लेकर जन्म इस दिलों में जो बसा है, सरगम से सजा है, वो यीशु हमारा जो सबका प्यारा, वो यीशु हमारा जो सबका प्यारा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और हमें तेरे वचनों को समझने के लिए मदद कर और तेरे रास्ता में चला। पिता परमेश्वर, मेरे हरेक श्रोताओं को विशेष रूप से तेरा वचन से आशीषित कर और मेरे संग हो पिता, मुझे तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के अनुसार तेरे सामर्थ के साथ बतला सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मसीह का जीवन और अनुग्रह। पवित्र शास्त्र के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, परमेश्वर की इच्छा के प्रति श्रेष्ठ पालन के मसीह के जीवन में उसकी पीड़ा, मृत्यु एवं पुनरुत्थान में परमेश्वर ने मानव पापों के लिए प्रायश्चित का एकमात्र साधन प्रदान किया, ताकि वे जो विश्वास द्वारा इस प्रायश्चित को स्वीकार करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिल सके एवं संपूर्ण सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता के पवित्र व अनंत प्रेम को अच्छी तरह से समझ सके। यह उत्तम प्रायश्चित परमेश्वर की व्यवस्था की धार्मिकता एवं उसके चरित्र के अनुग्रह की पुष्टि करता है, क्योंकि ये दोनों हमारे पापों की निंदा करते हैं एवं हमारे लिए क्षमा का प्रावधान करते हैं। एक खुला द्वार ब्राह्मण के केंद्र में जाता है, एक आवाज पुकारती है, अंदर आओ और देखो क्या होता है। आत्मा में प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के सिंहासन कक्ष में देखता है। एक चमकदार पन्ना मेघधनुष केंद्रीय सिंहासन को चारों ओर से घेरे हुए है और बिजली, गड़गड़ाहट और आवाजें उससे निकलती हैं। गणमान्य व्यक्ति श्वेत वस्त्रों में और सुनहरे मुकुट पहने हुए थोड़े छोटे सिंहासनों पर विराजमान हैं। जैसे ही स्तुति गान हवा में भरता है, प्राचीन भक्ति एवं आराधना में दंडवत करते हुए अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देते हैं। एक स्वर्गदूत हाथ में सात मुहर की पुस्तक लिए ऊंचे स्वर से कहता है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? प्रकाशित वाक्य 5:2। निराश होकर यूहन्ना देखता है कि ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई भी उस पुस्तक को खोलने योग्य है। उसकी निराशा रोने में बदल जाती है, जब तक कि उन प्राचीनों में से एक ने दिलासा देते हुए कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रकाशित वाक्य 5:5। तेजस्वी सिंहासन को फिर से देखते हुए यूहन्ना एक वध किए हुए मेमने को देखता है, परंतु अब वह जीवित है और आत्मा से सशक्त है। जैसे ही यह दीन मेमना पुस्तक को लेता है, सभी जीवित प्राणी एवं प्राचीन एक नया गीत गाने लगते हैं, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। तूने उन्हें हमारे परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक याजकों का राज्य बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:9-10। स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक रचा गया प्राणी उनके गीत में शामिल हो जाता है। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। प्रकाशित वाक्य 5:13। इस पुस्तक के विषय में इतना महत्वपूर्ण क्या है? यह शैतान की दासता से मनुष्य जाति को छुड़ाने का विवरण दर्ज करता है और पाप के ऊपर परमेश्वर की अंतिम जीत का चित्रण करती है। यह एक अति उत्तम उद्धार को प्रकट करती है कि जो पाप के गुलाम है उन्हें केवल उनके चुनाव के माध्यम से बर्बादी के कैद खाने से छुड़ाया जा सकता है। बेतलहम में अपने जन्म से बहुत पहले मेमने ने पुकार कर कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसे ही लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरी अंतकरण में बसी है। भजन संहिता 40:7-8। इसका तुलना हम कर सकते हैं इब्रानियों 10:7 से। मेमना जो जगत की उत्पत्ति से घात हुआ है, उसके आने से मानवता का उद्धार सिद्ध हुआ है। प्रकाशित वाक्य 13:8। पवित्र शास्त्र एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करता है जिसे मानव के उद्धार के लिए अत्यधिक चिंता है। परमेश्वरत्व के सदस्य लोगों को उनके सृष्टिकर्ता के साथ मिलन में वापस लाने के कार्य में सबद हैं। यीशु ने परमेश्वर के बचाने वाले प्रेम का प्रकाश डालते हुए कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। शास्त्र घोषणा करता है कि परमेश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना 4:8। वह मानवता तक अनंत प्रेम के साथ पहुंचता है। 31:3 यह कहता है कि परमेश्वर का प्रेम अनंत प्रेम है। उद्धार का निमंत्रण देने वाला परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परंतु उसके प्रेम की अनिवार्यता प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने के चुनाव की स्वतंत्रता की अनुमति देती है। प्रकाशित वाक्य 3:20-21। जबरदस्ती एक विधि जो उसके चरित्र के विपरीत है, उसकी योजना में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता है। जब आदम और हवा ने पाप किया, तब परमेश्वर ने उन्हें खोजने की पहल की। अपराधी जोड़ा अपने सृष्टिकर्ता की आवाज़ सुनकर खुशी से दौड़कर उससे मिलने नहीं आया, जैसा कि वे पहले क्या करते थे। इसके बजाय वे छिप गए, परंतु परमेश्वर ने उनका परित्याग नहीं किया, पर लगातार वह पुकारता रहा, तुम कहाँ हो। गहरे दुख के साथ परमेश्वर ने उनकी अवज्ञा के परिणामों को रेखांकित किया, दर्द, कठिनाइयाँ जिनका उन्हें सामना करना पड़ेगा। फिर भी उनकी पूर्ण निराशाजनक स्थिति में उसने उनके लिए पाप एवं मृत्यु पर अंतिम विजय की प्रतिज्ञा के साथ एक अद्भुत योजना को प्रकट किया। यह हम पाते हैं उत्पत्ति 3:15 में। बाद में इसराइलियों द्वारा सिनै पर्वत पर धर्म त्याग करने के पश्चात प्रभु ने मूसा को अपने हितकारी परंतु न्याय चरित्र को यह घोषणा करते हुए प्रस्तुत किया, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, परनपोतों और परपोतों को भी देने वाला है। निर्गमन 34:6-7। परमेश्वर का चरित्र अनुग्रह एवं न्याय के एक अद्वितीय सम्मिश्रण को दर्शाता है। दोषियों को दोष मुक्त करने की इच्छा, केवल मसीह के व्यक्ति में ही हम समझ सकते हैं कि चरित्र के इन गुणों का एक दूसरे के साथ कैसा मेल किया जा सकता है। क्षमा करना या दंडित करना। इसराइलियों के धर्म त्याग के दौरान परमेश्वर अक्सर अपने लोगों से उनकी अधर्मता को स्वीकार करने और उसके पास लौटने के लिए चाहत से विनती करता था। 3:12-14। परंतु उन्होंने उसके अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण को ठुकरा दिया। 5:3 में हम पाते हैं एक अपश्चापी व्यवहार जो क्षमा का मजाक उड़ाता है, दंड को अनिवार्य बना देता है। भजन संहिता 7:12। यद्यपि परमेश्वर दयालु है, वह उन्हें क्षमा नहीं कर सकता जो पाप से लिपटे रहते हैं। 5:7 कहता है क्षमादान का एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर पापियों को संत में बदलना चाहता है। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। यशाया 55:7। उद्धार का उसका संदेश संपूर्ण जगत में स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उधार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। यह हम पढ़ते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा यशया 45 का 22 पद में। पाप के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध। मूल आज्ञा उल्लंघन ने मानव मन में परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता की प्रवृत्ति को उत्पन्न किया। कुलिसियों 1:21। परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर की अप्रसन्नता के पात्र हैं, जो पाप के विरुद्ध भस्म करने वाली आग है। इब्रानियों 12:29। और हम इसका तुलना कर सकते हैं हबाकुक 1:13 से। गंभीर सत्य यह है कि सभी ने पाप किया है। रोमियो 3:23 के अनुसार सभी स्वभाव ही से क्रोध की संतान हैं। इफिसियों 2:3। और हम इसका तुलना करें इफिसियों 5:6 से। और मृत्यु के अधीन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6:23। दिव्य क्रोध वह है जिसे पवित्र शास्त्र पाप एवं अधर्म के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया कहता है। रोमियो 1:18। जानबूझकर परमेश्वर की प्रकटित इच्छा को, उसकी व्यवस्था को अस्वीकार करने से उसका धर्मी क्रोध या रोष भड़क जाता है। दूसरा राजा 17:16-18 तथा दूसरा इतिहास 36:16। जी ई लैड ने लिखा, मनुष्य नैतिक रूप से पापी हैं और जब परमेश्वर उनके विरुद्ध उनके अपराधों को गिनता है तो उसे उन्हें पापियों के रूप में, दुश्मनों के रूप में, दिव्य क्रोध के पात्र के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह एक नैतिक एवं धार्मिक आवश्यकता है कि पाप के विरुद्ध परमेश्वर की पवित्रता क्रोध में व्यक्त हो। फिर भी साथ ही साथ परमेश्वर विद्रोही संसार को बचाने के लिए तड़पता है, जबकि वह हर पाप से घृणा करता है। उसे प्रत्येक पापी के लिए प्रेमपूर्ण चिंता है। इज़राइल के साथ परमेश्वर के आचरण का अंत यीशु मसीह की सेवकाई में हुआ, जिसने दिव्य अनुग्रह के असीम धर्म की स्पष्ट अंतर्दृष्टि दी। इफिसियों 2:7। यहूना ने कहा, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। यहूना 1:14। मसीह यीशु पौलुस ने लिखा, हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान और धर्म और पवित्रता और छुटकारा ठहरा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। 1 कुरिन्थियों 1:30-31। इसलिए कौन उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस संकेत करता है कि यह परमेश्वर की कृपा ही है जो मन फिराव की ओर ले जाती है। रोमियो 2:4। यहाँ तक कि परमेश्वर द्वारा उद्धार के प्रस्ताव पर मानव प्रतिक्रिया भी मनुष्य के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ उत्पन्न होती है। हमारा विश्वास परमेश्वर का एक उपहार है। रोमियो 12:3। जैसा कि हमारा प्रस्ताव है। प्रेरितों के काम 5:3। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रेम के प्रत्युत्तर में उदय होता है। हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रेम के जवाब में उठता है। 1 यूहन्ना 4:19। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्यार किया जब हम पापी ही थे और हमारे लिए बलिदान हो गया। हम स्वयं को पाप, पीड़ा एवं मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं। हमारी स्वयं की धार्मिकता मैले चिथड़े के समान है। यशाया 64:6। परंतु परमेश्वर जो दया में धनी है, उसके महान प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया तब भी जब हम अपराधों में डूबे थे, मसीह के साथ हमें जीवित किया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यह हम पढ़ते हैं इफिसियों 2:4, 5, 8, 9 में। हाँ प्यारो भाइयों और बहनों, हम अपने कर्मों से तो उद्धार नहीं पाते हैं, लेकिन जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है, उसने पूर्ण रीति से परमेश्वर का वचन का पालन किया और अंततः हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया कि जो कोई उसके लहू पर विश्वास करेगा वह विजयी होगा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम विश्वास करें और उसका काम ना करें। जो सच्चा विश्वास करता है वह उसका आज्ञा का भी पालन करेगा। यह आज्ञा पालन प्रेम से भरा हृदय से उत्पन्न होता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसका आत्मा हम पर वास करता है और हमें आज्ञा पालन करने के लिए सामर्थ्य देता है, और हम विजयी जीवन व्यतीत करते हैं। आइए हम यीशु पर विश्वास करें और हमारे मन में उसके आत्मा को आने दे कि हम यहीं इस उद्धार और अनंत जीवन का अनुभव कर सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, और हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि तूने हमें प्रेम किया है और प्रभु यीशु मसीह में हमें उद्धार देता है। हम तेरे पास आए इसके लिए हमें तेरा पवित्र आत्मा का अगुवाई दे और सहायता कर, और हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन दे पिता, जैसा कि तू प्रतिज्ञा किया है। मेरे हर एक श्रोताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो तेरे वचनों को सुने हैं, उन्हें बहुतायत से आशीष दे और तेरे रास्ता में चलने के लिए मदद कर, और हम सबों को तेरे राज्य में पहुँचा दे, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।